रात्रि क्लास चल रहा था, 5/11/1966 दूसरे पेज के मध्य में बात चल रही थी। सीढ़ी के चित्र में भक्ति मार्ग में ये भी बहुत क्लियर दिखलाना चाहिए कि बिगर लाइट वाले, कौन सी लाइट? पवित्रता की लाइट वाले, और वो जिनकी पूजा करते हैं वो पवित्रता की लाइट वाले। और पूजा करने वाले ये फिर राजा रानी है। वो चित्र बनाना ही लक्ष्मीनारायण का चाहिए। यहाँ इस भक्ति मार्ग की दुनिया में जो पुजारी बनाते हैं ना, सतयुग में लक्ष्मी नारायण का राज्य है, उसमें फिर वही राजा रानी बिगड़ता। कौन से राजा रानी? सतयुग में जो लक्ष्मी नारायण का राज्य होता है, उस लक्ष्मी नारायण के राज्य में वो ही फिर राजा रानी बिगड़ता। कौन से? सतयुग की बात हो रही है। माना सतयुग के आदि में नर से नारायण बनने वाले, उनका राज्य। चढ़ती कला वाले और फिर सतयुग के पहले जन्म से चढ़ती कला वाले या उतरती कला वाले? उतरती करा वाले। वो राजा रानी फिर बिगड़ताजधारी द्वापर युग में। कौन से बिगड़ताजधारी? जो सतयुग में इंद्रियों का सुख लेते हैं, जैसे राधा कृष्ण लक्ष्मी नारायण के नीचे दिखाए गए, तो इंद्रियां है ना, भले ज्ञान इंद्रियां हैं, सुख तो लेते हैं। इंद्रियां शरीर का अंग हैं या नहीं? तो देह का सुख लेते हैं। तो उतरती कला वाले या चढ़ती कला वाले? पहले ही जन्म में 16 कला संपूर्ण से क्या बन जाते? पौने 16 कला बन जाते। फिर वो लाइट के ताजधारी सतयुग में भी पहले जन्म में है तो लाइट के ताजधारी। आप पवित्र हैं क्या? पवित्र तो हैं, लेकिन वो लाइट के ताजधारी द्वापर युग में बिगर लाइट के बन जाते राजा रानी और फिर मत्था टेकते बस। ये बड़ी समझानी है। क्या बड़ी समझानी है? है जो नर से डायरेक्ट नारायण बनते हैं वो तो चढ़ती कला वाले। कौन सी युग में? संगम युग में। संगम युग है ही चढ़ती कला का युग। फिर सत्यु के आदि से उतरती कला। तो उतरती कला में जो बनते हैं राजा रानी वहां तो ताजधारी हैं, लाइट के ताजधारी हैं, लेकिन उतरती कला वाले हैं। इसलिए वो ही द्वापर युग में मत्था टेकते हैं। शूटिंग कहाँ होती है? ए? संगम युग में। कैसे? मान लो सत्युग का फर्स्ट नारायण ही ले लो। कौन है? ब्रह्मा बाबा। अभी तो अपन को गीता का भगवान समझते हैं। क्या समझते हैं? हम तो भगवान हैं। भक्ति मार्ग में गाया जाता है कृष्ण गीता का भगवान, तो बुद्धि से उतरता ही नहीं। तो अभी तो माथा नहीं टेकते हैं, है? बुद्धि झुकाते हैं? झुकाते नहीं। बुद्धि झुकाते नहीं है, लेकिन बाबा ने बोला कि बैल पर शंकर सवार होता है या शंकर पर बैल सवार होता है वो संपूर्ण स्टेज की यादगार है। बैल और शंकर दोनों के लिए ये अपूर्ण स्टेज की यादगार है। माने बैल भी संपूर्ण, जिसके ऊपर सवार है शंकर, और शंकर भी संपूर्ण। जब तक पुरुषार्थ संपूर्ण नहीं हुआ है तो बैल भी अधूरा और शंकर भी अधूरा। फिर बताया हाई जंप लगाते हैं तो बैल पर सवार हो जाते हैं। कैसे? हाई जंप लगाते हैं तो बैल पर सवार हो जाते हैं। जब सवारी हो जाती है तो बैल झुकता है शंकर के सामने या नहीं झुकता है? है? झुकता है। वो तो हुई शिव का एक शास्त्र लिखा गया है। कौन सा है? शिव महापुराण। वहां की बात सारे शास्त्र पुराण है तो संगम युग के। अच्छा रामायण में ले लो। रामायण में राम को भगवान मान लिया, उनका अव्वल नंबर पुजारी कहो दास कौन है? हनुमान। फिर जाओ आ जाओ महाभारत में, भागवत में, वहां कृष्ण को भगवान मान लिया। उस भगवान के सामने घड़ी घड़ी कोई भी बात में तकरार होती है कृष्ण और बलराम की, तो किसको झुकना पड़ता है? बलराम तो वहां भी माथा टेक हो गया, संगम में ही हुआ ना माथा टेक। तो सतयुग में दिखाया जितने भी नारायण हैं वो सब जब पहले नंबर वाला ही माथा टेक तो बाद वाले नारायण भी माथा टेक हो जाते। उन नारायणों की उत्तर उत्तर जितने बाद वाले हैं उनकी उतनी मान्यता नहीं है। नारायण के रूप में पूजे जाते हैं क्या हैं? उतरती कला वालों को कौन पूजेगा? कौन पूजे जाते हैं? चढ़ती कला वालों की बात है। तो ये बड़ी समझानी है, पहले समझना और फिर समझाना। फिर उसमें ही चित्र में लिखना है, भक्ति मार्ग में आपे ही पूज्य, क्या आपे ही पूज्य, आपे ही पुजारी। कौन पुजारी, कौन पूज्य? जो भी संगम युगी चढ़ती कला वाले लक्ष्मी नारायण हैं, उनकी पीढ़ी में आने वाले, पीढ़ी हुई ना सतयुग में आठ, वहां तो पूज्य थे, फिर द्वापर में आके क्या बन जाते? पुजारी बन जाते। किसके पुजारी बन जाते? झुक जाते ना, पुजारी बन जाते। ऐसा क्यों हुआ? द्वैतवादी द्वापर युग में ऐसा हुआ। कैसा? दो दो धर्म जिन्होंने बनाई दिए, इब्राहिम बुद्ध क्राइस्ट आदि ने दो दो राज्य बनाई दिए, दो दो कुल बनाई दिए, दो दो भाषाएं बनाई दी। उन द्वैतवादियों के प्रभाव में वो नर से डायरेक्ट नारायण बनने वाला वो झुकता है या उतरती कला वाले नारायण झुकते हैं? हैं? जो ही वो पाटधारी है वो तो कभी झुक नहीं सकता। तो आपे ही पूज्य, आपे ही पुजारी। उन्हीं चित्रों में लिखना चाहिए फिर वो आपे ही पूज्य, आपे ही पुजारी। खुद भी जो पूज्य थे सो फिर पुजारी बन करके अपने को ही माथा टेकते हैं। पास्ट के जन्मों को माथा टेकते हैं। कौन से जन्मों को? सतयुग में जो जन्म पास्ट हो गए उनको माथा टेकते हैं। अब ये समझ की बात है ना, बहुत गुई डीप समझने की बात है। अव्वल नंबर पीढ़ी में जब थे लक्ष्मी नारायण नाम की पीढ़ी चली, किसकी पीढ़ी चली? ऊंचते ऊंच लक्ष्मी नारायण की पीढ़ी में पूज्य थे। फिर यहाँ द्वैतवादी युग द्वापर युग में आकर के पुजारी किसके प्रभाव में बन गए? वहां किसके प्रभाव में थे सतयुग में? जो है सेकंड नारायण के प्रभाव में थे, फर्स्ट नारायण की गद्दी चलती है ना। गद्दी शुरू कहाँ से होती है? संगम से या सतयुग से? संगम से। तो फर्स्ट नारायण से सारे ही जो बाद वाले नारायण थे वो प्रभावित हुए ना वहाँ, एक से प्रभावित थे। और द्वैतवादी द्वापर युग में क्या गड़बड़ हो गया है? जो जो दूसरे धर्म वाले धर्म पिता आए उनके प्रभाव में, उनके प्रभाव में आ गए। तो ये बहुत डीप पॉइंट है समझने की। जो पहला नारायण है वो किसी देहधारी के प्रभाव में नहीं आता, संगम युग का जो नर से डायरेक्ट नारायण बनता है, पहले प्रिंस फिर नारायण तो बनता नहीं, और बाकी सारे ही नारायण प्रभावित हो जाते हैं। कारण तो पता चल गया, क्यों प्रभावित हुए, प्रभावित माने प्रजा, किसकी प्रजा बन गए, वो तो सच युग में थे, द्वापर युग में किसकी प्रजा बन गए, द्वैतवाद फैलाने वाले देहधारी धर्म गुरुओं की प्रजा बन गए। तो ये लिखित में ये बात कैसे समझावे, जो वो समझने वाले जिज्ञासु समझ जावे। इस सीढ़ी के चित्र से ही समझ जावे। इसलिए बाबा कहते हैं, अभी देखो, अभी कोई कहेंगे बाबा ये बातें पहले क्यों नहीं बताई है, जो बातें अभी बताते हैं वो पहले क्यों नहीं बताई, कि कौन माथा टेकने वाले बनते हैं और कौन माथा टेक नहीं बनते हैं, द्वापर युग में भी क्या। मान लो हीरो पार्टधारी है मनुष्य सृष्टि का मंच का, तो हीरो पार्टधारी किसी के सामने झुकेगा नहीं झुकेगा। मिसाल मौजूद है हिस्ट्री में कि नहीं, 2000 वर्ष की हिस्ट्री जो द्वापर युग की है, कलयुग की है, द्वापर युग में भी ऐसे सम्राट हुए है, चंद्रगुप्त और उसका गुरु का गायन है, विदेशी आक्रांताओं ने आक्रमण किया, ढेर सारे राजा हैं झुक गए और वो नहीं झुके, विदेशी आक्रांताओं को आखिर भागना ही पड़ा। सच्चा भागता है या झूठा भागता है, कहते हैं झूठ के पांव नहीं होते और सत्य तो अडिग रहता है, ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः। सत्य का इस सत्य पर अभाव होता नहीं और जो असत्य है वो टिकता नहीं। देखो इस्लाम धर्म का धर्मखंड अरब देश अफ्रीका, बौद्ध धर्म का धर्मखंड चीन और जापान, क्रिश्चियन धर्म का धर्मखंड यूरोप और अमेरिका। ये 2500 साल पहले थे, किसी को पता है थे नहीं थे। अभी 500 साल पहले अमेरिका का पता चला, 300 साल पहले ऑस्ट्रेलिया का पता चला, 300 साल पहले बीच में आए और अभी बीच में 2500 साल पूरे होंगे, महाविनाश होगा, एटम बम फटेंगे, समुद्र का स्तर बढ़ेगा और ये फिर जलमय में सब डूब जाएंगे। तो झूठ खंड है ना कि सच खंड है, और भारत खंड, भारत खंड तो अविनाशी खंड है। क्यों अविनाशी है, है? क्योंकि भा माने ज्ञान की रोशनी और रत माने लगा रहने वाला, या ज्ञान की रोशनी में सदा ही लगा रहने वाला है। संगम युग में तो उसका जीवन लगा ही हुआ है, काहे में, ज्ञान की रोशनी में रत है ही। लेकिन सतयुग त्रेता में भी वो तो सभी देवताएं आत्मिक स्थिति में रहते हैं। ज्ञान का बीज क्या है, ज्ञान का सार क्या है, आत्मिक स्थिति, तो वहां तो है ही। और द्वापर युग में भी पहले पहले कहते हैं वेद बने, किसने बनाए, वेद व्यास ने बनाए। वेदों में भी श्रीमद् भगवत गीता उसमें लिखा हुआ है, व्यास प्रसादात, किसे के प्रसाद से मिली, प्रसन्नता से मिली, वेद व्यास की, व्यास प्रसादात, व्यास की प्रसन्नता से हमको श्रीमद् भगवत गीता मिली। तो देखो महावीर रत है काय में, ज्ञान में, उसके बाद वेदों की व्याख्याएं निकली, आरण्यक निकले, शतपथ ब्राह्मण आदि निकले, उनकी भी व्याख्याएं निकली, उपनिषद निकले, उपनिषदों की भी व्याख्याएं निकली, पुराण निकले, भागवत पुराण, महाभारत पुराण, रामायण पुराण निकले ना। तो उनकी भी जो व्याख्या है, जो पुराण है या उपनिषद है, उनमें भी पहला पहला कोई तो लिखने वाला होगा ना, है? कौन होगा अव्वल नंबर, कौन उपनिषदकार, पुराणकार, आरण्यकार, शतपथ ब्राह्मण आदि लिखने वाला पहला पहला कौन? वो ही आत्मा, जैसे वाल्मीकि रामायण किसने लिखी है? वाल्मीकि ने तो लिखी, लेकिन वो आत्मा कौन सी जो मुरली में बोला है, अपने अपने शास्त्रों में अपनी अपनी कथा कहानियां लिख दी है? तो वाल्मीकि रामायण में जो रामायण की कथा संस्कृत में लिखी गई, वो किसने लिखी है? वो ही राम वाली आत्मा, राम का ही उसमें बखान है, राम की ही जीवन कहानी है, लिखी किसने? वही राम वाली आत्मा ने, वाल्मीकि रूप में। तो वहां भी देखो कहां काय में रहता है, ज्ञान की वाणी में रहता है। फिर कलयुग में आकर के तुलसी कृत रामायण लिखी है, वहां भी कौन हुआ? वही राम वाली आत्मा। ये तो हुई ज्ञान की बात। ज्ञान की बातें तो मुख से सुनी जाती हैं, सुनाई जाती हैं, कान से सुनी जाती हैं, लेकिन प्रैक्टिकल जीवन में भी तो ज्ञान होना चाहिए ना। तो प्रैक्टिकल जीवन में द्वापर युग से जो भी विदेशी धर्म पिताएं आए, उन्होंने हिंसा का व्यवहार शुरू कर दिया या अहिंसा चलती रही? हिंसा का प्रभाव फैल गया दुनिया में, क्योंकि देह अभिमानी गुरु थे, धर्म पिताएं कि निराकार थे, देह अभिमानी थे, तो देह अभिमान के कारण उन्होंने हिंसा की युद्ध शुरू कराई, अलेक्जेंडर आया, द्वापर के आदि की बात है, तो हिंसा का युद्ध कराया ना। हिटलर, नेपोलियन, जितने भी महत्वाकांक्षी हुए, विश्व विजय प्राप्त करने वाले, वो सब उन देह अभिमानी धर्म पिताओं के धर्म से धारणा से प्रभावित थे। तो वो दूसरे धर्म वाले जब भारत में आकर के देह अहंकार दिखाने लगे, हिंसा करने लगे, तो एक बौद्ध धर्म था भारत है, उन्होंने कहा हमारी पुरानी भारत की परंपरा है अहिंसक बनना है। तो उन्होंने हाथ उठा दिए, अच्छा भले तो हमारे बीवी बाल बच्चों को ले जाओ, हम हिंसा हम अहिंसा नहीं। बताओ जो अपने परिवार की अपनी रचना की रक्षा नहीं कर सकता वो विश्व की रक्षा क्या करेगा? दूसरों की रक्षा कर सकता है क्या? तो उन्होंने अहिंसा का सही अर्थ उठाया या गलत अर्थ उठाया, माने उनको विदेशी आक्रांताओं से मुकाबला करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? अपने और अपने बाल बच्चों की सुरक्षा के लिए कि आत्मसमर्पण कर देना चाहिए, नहीं करना चाहिए। लेकिन जो सच्चे भारतीय थे संगम युग में, जिनको बाबा ने रचना बनाया, कौन बाबा? शिव बाबा, जो सदा आत्मिक स्थिति में रहने वाला है। वो शिव बाबा ने उन बच्चों को एक ही जन्म में ऐसी पढ़ाई पढ़ाई कि वो पूरा देह वाहन छोड़ करके आत्मिक स्थिति में 4.5 लाख आत्माएं स्थित हो जाती। तो किसके बच्चे हुए? जो सदा आत्मा है उस आत्मा के बच्चे बन गए, सदा शिव के बच्चे डायरेक्ट बने। उसी जन्म में बने या अगले जन्म में बने? उसी जन्म। उसके अलावा जितने भी हुए, चाहे उन 4.5 लाख में ब्रह्मा सरस्वती जैसी प्रवेश करने वाली आत्माएं क्यों न हो, वो आत्माएं भी शरीर रहते रहते, जीवन रहते रहते आत्मिक स्थिति को धारण नहीं कर सके। तो उनको ज्ञान सूर्य के बच्चे कहेंगे हैं? सूर्यवंशी बच्चे तो नहीं। हाँ, उनमें से कुछ गिनी चुनी आत्माएं ऐसी निकलती हैं चंद्रवंशियों में से, ज्ञान चंद्रमा के बच्चों में से, जो अपन को सूर्यवंशियों के प्रति संपूर्ण समर्पण कर देती है, जैसे लक्ष्मी और लक्ष्मी के फॉलोअर्स, क्या जो विजयमाला बनती है, तो वो आत्माएं भी ऐड हो जाती हैं सूर्यवंशियों। तो सूर्यवंशियों की टोटल संख्या कितनी हुई है? साढ़े चार लाख, क्योंकि 16 कला संपूर्ण बनने वाले सतयुग के पहले जन्म में भी होते हैं, नहीं होते? होते हैं। तो जो 16 कला संपूर्ण तो बनते हैं, लेकिन उतरती कला वाले बनते हैं, और ये 4.5 लाख लगातार चढ़ती कला वाले। और जो चढ़ती कला वाले बनते हैं, उनका जो मुखिया है, रचयिता है, कौन? शिव। शिव तो बिंदु है, रचयिता साकार होगा या निराकार होगा? तो शिव कैसे? शिव तो सदा निराकार है, साकार पतित सृष्टि में आता है, पतित तन में आता है, तो भी उसकी स्टेज निराकारी रहती है, वो तो रचयिता नहीं हुआ। तो कौन रचयिता? जिसे मैं हाँ, जिसे मैं मुकर्रर रूप से प्रवेश करता है वो हुआ रचयिता। तो देखो उसका जो स्वरूप है, जो यादगार मंदिर है, वो कौन सा है? सोमनाथ मंदिर तो है, लेकिन सोमनाथ मंदिर में जो लिंग रखा हुआ था और उसमें जो हीरा जड़ा हुआ था लिंग में, वो दोनों पत्थर का लिंग और हीरा, वो दोनों किसकी यादगार हैं? निराकार शिव बाप की। हीरा पत्थर बनता है या नहीं बनता है? हीरा पत्थर होता है या नहीं होता है? तो शिव बाप क्या पत्थर है? हैं? वो तो पत्थर बुद्धि भी नहीं बनता और पारस बुद्धि भी नहीं बनता। बनता है नहीं? बनता कौन है? पत्थर बुद्धि सो पारस बुद्धि जिसमें प्रवेश करते हैं मुकर्रर रूप से, वो ही शिव का बड़े से बड़ा बच्चा है। भारत की परंपरा में राजाओं ने जो अपना राजाई का वर्षा है वो कौन से बच्चे को दिया? परंपरा किसने शुरू की? संगम युग में शिव बाप ने परंपरा शुरू की। क्या? शिव बाप ने जो देवताएं मनाए, क्या ब्राह्मण सो देवताएं बनाए, वो देवताओं में बड़े से बड़ा ब्राह्मण सो बड़े से बड़ा देवता, क्या पहला ब्राह्मण सो पहला देवता, पहला ब्राह्मण सो पहला क्षत्रिय, सो पहला वैश्य, सो पहला शूद्र। चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुणकर्म स्वभाव, गुण कर्म और स्वभाव के आधार पर मैंने चार वर्णों की रचना की है। कब? संगम युग में की। तो ब्राह्मणों में पहला ब्राह्मण चोटी का ब्राह्मण, क्या वो कौन से देश में चोटी है जो सबसे ऊंची है? कोई देश है जिसमें पहाड़ की चोटी सबसे ऊंची है? भारत में है ना? है तो वो यादगार है क्या? एवरेस्ट चोटी पूर्वी सभ्यता का, जहाँ से सूर्य निकलता है उस सभ्यता का सबसे ऊंची चोटी, जो बाप कहते हैं जब तुम विकारों की दंदल में पूरा डूब जाते हो सिर्फ चोटी बचती है, क्या तो चोटी पकड़ के मैं खींच लेता हूँ। तो कौन हुई वो चोटी? जिस चोटी में जब गांठ लगाते हैं तो किसका चित्र बन जाता है? हैं? शिवलिंग बन जाता है। गांठ लगाते हैं ना चोटी में तो गोल गोल शिवलिंग बनता है ना। तो वो चोटी जो शिवलिंग बन जाता है, बताओ वो चोटी कौन है जो पहला ब्राह्मण सो पहला देवता, फिर जब त्रेता युग शुरू होता है तो पहला क्षत्रिय छात्र तेज वाला, कैसा? छात्र तेज वाला, छत्र छाया वाला। सीढ़ी के चित्र में लक्ष्मी नारायण को छत्र छाया दिखाई है, ध्यान से देखा है, हिलाई दिया है, नहीं दिखाई। और त्रेता में राम सीता को छत्र छाया दिखाई, क्यों? किसकी छत्र छाया है वो? त्रेता युग की यादगार नहीं है वो छत्र छाया, कहाँ की यादगार है? संगम युग में वो आत्माएं वो छत्र छाया में रहती हैं। किसकी छत्र छाया में है? जो ऊंचे थे ऊंचा भगवंत गाया हुआ है, ऊंचे थे ऊंचा बाप गाया हुआ है, सुप्रीम फादर गाया हुआ है, जिसका कोई बाप होता ही नहीं, उसकी छत्र छाया रहती है उसके ऊपर। क्यों रहती है? क्योंकि क्षत्रियों का काम है ब्राह्मणों की सुरक्षा करना, तो वो ब्राह्मणों की सुरक्षा करता है। जो ब्राह्मण सतयुग त्रेता में क्या बनते हैं? देवता बनते हैं, उनकी रक्षा करता है। रक्षा कैसे होती है? राम के पास क्या था जो उन्होंने अपनी सेना की सुरक्षा की? ज्ञान बाणों से सुरक्षा की। कैसे सुरक्षा करते हैं? ज्ञान बाणों से। तो वो बाण कौन देता है? वो ज्ञान के बाण कौन देता है? शिव बाप देता है। कब देता है? संगम में भी। कब? संगम तो 100 साल का, तो ज्ञान बाण कब दिए? हैं? पुरुषोत्तम संगम युग में भी 76 में लक्ष्मी नारायण पुरुषोत्तम का जन्म हुआ, 66 में घोषणा की गई 10 साल पहले, सीढ़ी के चित्र में लिखा हुआ है, मुरली में बोला हुआ है। तो पुरुषोत्तम बनने वाली आत्मा प्रत्यक्षता रूपी जन्म 76 बाप की प्रत्यक्षता वर्ष में लेती है। कौन सा बाप? बेहद के बाप तो दो हैं, तो कौन सा बाप की प्रत्यक्षता है? मनुष्य सृष्टि का बाप प्रत्यक्ष हुआ राम वाली आत्मा। वो राम वाली आत्मा को ज्ञान बाण कब मिले? जन्म मिलते ही मिल जाते हैं क्या है? संगम में कब है? 86 में, 76 में, 76 में नहीं, मुरली में बोला राम फेल हो गया। क्या? राम फेल हो गया। अगर बड़ा बच्चा फेल हो जाए, बाप उसको अलग कर दी परिवार से, ऐसे होता है ना, तो दादे की प्रॉपर्टी देनी पड़ती है या नहीं देनी पड़ती है? है? तो उस बड़े बच्चे को ज्ञान बाण दे दिए। क्या दे दिया? ज्ञान बाण दे दिए, बुद्ध रूपी तर्कस दे दिया, जाओ कमाओ खाओ, तुमको इस ब्राह्मण परिवार से कुछ भी अब अगले जन्म में नहीं मिलने वाला। तो सच्ची बात है या झूठी बात है? सच्ची बात है। वो आत्मा दोबारा जन्म लेके आती है, बल ब्राह्मण बनती है, ब्रह्मा का ही ज्ञान सुनती है, सुनती है ना, लेकिन उस परिवार से उसको कोई सहयोग नहीं मिलता। तो कैसे पावरफुल बन जाती है? जो सच्चे ब्राह्मणों की सुरक्षा करती है, युद्ध करके। कौन सा युद्ध? ज्ञान बाणों का युद्ध करती है। वो ज्ञान बाण उसे किससे मिलते, किससे मिले हैं? शिव बाबा से मिले। और कोई आत्मा को, कोई भी ब्राह्मण को वो ज्ञान बाण मिलते नहीं है। उस एक आत्मा के लिए गाया हुआ है, अपनी घोट तो नशा चढ़े, तुलसीदास चंदन घिसे चंदन घोटे और तिलक देत रघुवीर, भगवान उसे विश्व की बादशाही का तिलक दे देते हैं। मुरली बोला ना, कहाँ की बात, संगम युग में ही विश्व की बादशाही का तिलक दे दिया। कौन सा युद्ध करता है? है? ज्ञान बाणों का युद्ध करता है। किसके साथ? माया रूपी रावण के 10 सिरों के साथ। क्या? माया रूपी रावण के 10 सिरों के साथ। कामी इस्लामी जो ब्राह्मण सो देवता बनते हैं, और देवता से फिर कम कला के देवता बनकर के कमजोर आत्माएं वो ही द्वापर युग से कन्वर्ट इस्लाम धर्म में हो जाती है। क्रिश्चियन बनते हैं, बौद्ध भी बनते हैं, और धर्मों में भी कन्वर्ट होते हैं। कौन कन्वर्ट होते हैं? जो अपन को हिंदू कहलाते हैं वो कन्वर्ट होते हैं। हिंदू का अर्थ क्या हुआ? हिंग माने हिंसा, दू माने दूते। वो समझते हैं कि हम हिंसा को दूर करने वाले, इसलिए हम हिंदू हैं। शूटिंग कहाँ होती है? ब्राह्मणों की दुनिया में। कौन ये शूटिंग कर रहे हैं? वो समझते हैं कि और तो सब एडवांस पार्टी वाले हिंसा करने वाले, काम विकार की खास हिंसा करने वाले हैं, और हम अहिंसक हैं, हम काम विकार की हिंसा नहीं करते। ऐसा कौन समझते? वो सारे ब्रह्मा कुमार कुमारी ऐसे ही समझते हैं कि हम अहिंसा नहीं करते हैं, हम सच्चे हिंदू हैं, हम हिंसा को दुयते दूर करने वाले हैं। और दुनिया में सब, चाहे भले एडवांस पार्टी वाले हों, वो सब बढ़ाने वाले हैं। तो वो ही हिंदू द्वापर युग से दूसरे दूसरे धर्मों में कन्वर्ट होते रहते, देखने में भी आता है। जो भी भक्ति मार्ग के आडंबर हैं, रावण जलाना, दीपक जला के दीपमाला मनाना, मुरली बोला तुम बच्चे तो दीपक नहीं जलाएंगे क्या? तुम तो छत पे चढ़ करके दीपमाला देखेंगे भी नहीं क्या? तुम तो आत्मा का दीपक जगाते हो या मिट्टी के दीपक जलाते हो? आत्मा का दीपक जलाते हो, तो तुम क्यों छत पे चढ़ करके देखेंगे कैसी दिवाली मनाई जा रही? न तुम दशहरा मनाते हो। वो क्या करते हैं? दुनिया वालों की तरह दशहरा भी मनाते हैं, सारे त्योहार मनाते हैं। तो भक्ति मार्ग वाले हुए ना, माथा टेकने वाले हुए ना, है? वो ही सतयुग के नारायण जो कीर्ति कला वाले और उनकी प्रजा, वो द्वैतवादी द्वापर युग में आकर के जन्म बाई जन्म जो संगम युग में अपने को हिंदू समझते हैं, वो ही वहाँ हिंदू अपन को कहलाए करके दूसरे दूसरे धर्मों में हिस्ट्री में कन्वर्ट होते रहे। पक्की बात है, कच्ची बात है? पक्की बात है। वो कौन है जो कन्वर्ट हो जाते हैं दूसरे धर्मों में? बाबा ने कहा दो प्रकार के ब्राह्मण हैं, एक मुखवंशावली और दूसरे कुखवंशावली। जो मुखवंशावली ब्राह्मण हैं, वो ब्रह्मा के मुख से शिव ने जो बोला, जो श्रीमत दी, उसको मानने वाले हैं। क्या? कुख वंशावली नहीं है, कुख माने गोद, गोद को मानने वाले नहीं है। ब्रह्मा की गोद में बैठ करके अपना को बड़ा मानने वाले नहीं है वो ब्राह्मण। जो कुखवंशावली है उनको क्या नशा रहता है? अरे तुम कल के छोरे आए है, तुम क्या हमको ज्ञान सुनाएंगे? हमने तो ब्रह्मा बाबा की मम्मा की गोद ली है। क्या क्या नशा रहता है? तो देह का नशा रहता है या ज्ञान सागर के सुनाए हुए ज्ञान का नशा रहता है? है देह का नशा रहता है। तो कमजोरी आएगी या नहीं आएगी? कमजोरी आ जाती है। वो कमजोरी धारण करने वाले जो भक्ति मार्ग में नौ कुरियों के ब्राह्मण माने जाते हैं, नौ ग्रहों के नौ फॉलोअर्स, नौ धर्म वाले, नौ कुरियों के ब्राह्मण, उनमें से जो अव्वल नंबर कुरी है सूर्यवंशी, वो तो ज्ञान सूरी की वाणी को ही मानते हैं। क्या कोई की कुख को गोद को मानने वाले नहीं है? कोई भी देहधारी धर्मगुरु को मानने वाले नहीं है? बाकी जितने भी हैं नौ कुरियों में बाद वाली आठ कुरी वाले ब्राह्मण, वो सब कुख वंशावली बन जाते हैं। क्या क्या नशा रहता है उनको? हमने मम्मा बाबा की गोद ली है। तो पावरफुल बनते हैं या कमजोर बनते हैं? पावरफुल बनते हैं, कमजोर बनते हैं। क्यों कमजोर बन गए? क्योंकि देह विनाशी और आत्मा अविनाशी। विनाशी असक्त है, असक्त है, और अविनाशी सत्य है और शक्तिशाली है। क्या इस सृष्टि पर जो गाया हुआ है ना सतो विद्यते भावो, क्या जो असत है उसका भाव है ही नहीं, वो टिकता ही नहीं, और सत्य का कभी अभाव नहीं होता इस सृष्टि पर। क्या सत्य का इस सृष्टि पर अभाव, अभाव माने सत्य न हो ऐसा कभी नहीं होता, चाहे सारी सृष्टि का विनाश क्यों न हो जाए फिर भी सत्य टिका रहेगा। वो कौन है? कौन सी आत्मा?
परमात्मा।
कौन सी परमात्मा?
सत्य एक ही है शिव।
हाँ गीता में तो बताया है दो प्रकार की आत्माएं हैं, क्षर, क्षर तो होने वाली माने पतित बनने वाली, और अक्षर जो कभी क्षरित नहीं होती, संपूर्ण पतित नहीं बनती। उन दो में एक है जो अक्षर है और बाकी सब क्षरित है, चाहे वो मनुष्य सृष्टि का बाप ही क्यों न हो, लेकिन वो मनुष्य सृष्टि का बाप जिसमें अक्षर प्रवेश करता है वो पूरा ही विकारों की दुनिया में डूब जाता है या कुछ हिस्सा रह जाता है? हैं? बताओ। अभी अभी बताया था, भूल गए? हैं? पूरा डूब जाता है। है तो क्या रह जाता है,
चोटी
रह जाती है, वो है ही ब्राह्मणों की चोटी, ब्राह्मणों की भी चोटी है, देवताओं की भी चोटी है, सबसे ऊंची स्टेज वाला है, क्षत्रियों में भी सबसे ऊंची स्टेज वाला है, शूद्रों में भी सबसे ऊंची स्टेज वाला है, माने शूद्र माने भिखारी, भिखारियों में भी सबसे ऊंची स्टेज वाला। इसीलिए शिव ने ब्रह्मा की वाणी में बोला, किसके द्वारा, उसी आत्मा के द्वारा बोला, मुकर्रर रथ के द्वारा, स्वर्ग की दुनिया मेरी है तो नरक की दुनिया मेरी नहीं है क्या? हा? जो मनुष्य सृष्टि का बीज है वो आत्मा कहती है, क्या स्वर्ग की दुनिया मेरी है तो नरक की दुनिया मेरी नहीं है क्या? है या नहीं
है?
वो देवताओं का भी सरताज और वो राक्षसों का भी सरताज। इसीलिए भक्ति मार्ग में एक ही देवता है जिसको देवताएं भी मानते हैं, झुकते हैं, और राक्षस भी झुकते हैं, विष्णु को नहीं झुकते राक्षस, क्योंकि वो पक्षपाती है देवताओं का, और ब्रह्मा को तो न राक्षस मानते हैं न देवताएं मानते हैं, ब्रह्मा की तो पूजा ही नहीं होती, ब्रह्मा के तो मंदिर ही नहीं बनते, ब्रह्मा की तो मूर्तियां भी नहीं बनती। तो देखो वो जो सारी दुनिया में मान्यता प्राप्त है उसको सब धर्म वाले अपने अपने शास्त्रों में उसका वर्णन करते होंगे या नहीं करते होंगे, किस रूप में? महादेव, ये तो हिंदुओं की बात है, देव भारतीयों की बात है। हाँ, मुसलमान आदम कहते हैं, क्रिश्चियंस एडम कहते हैं सृष्टि के आदि पुरुष को, और जैनी लोग आदिनाथ कहते हैं। इसका मतलब दुनिया के हर धर्म वाले उस आदि पुरुष को मानते जरूर है, भारत में भी खास कहते हैं तम आदि देव पुरुष है, पुराण पुराने पुरुष हो, पुरानी आत्मा हो, तुमस्य विश्वस्य परम निधानम, तुम इस सारे विश्व के परम निधान हो, वेत्ता से वेतस, क्या जो जानने योग्य है उस सब के जानकार हो, वो सृष्टि का आदि पुरुष। झाड़ के चित्र में सबसे ऊपर बैठा हुआ दिखाया गया है, देखा कभी ध्यान से, हैं? सारी आत्माओं को खींच रहा है, इसलिए आकर्षण करने के कारण भक्ति मार्ग में उसका नाम कृष्ण दे दिया। क्या उन्होंने कृष्ण बच्चे को समझ लिया, क्या कृष्ण माने आकर्षण करने वाला, तो सारी आत्माओं को आकर्षित करता है, खींचता है, कैसे खींचता है, है? बोला तुम बच्चों को नैनों पर बिठा कर ले जाऊंगा, क्या कहा, तुम बच्चों को नैनों पर बिठा कर ले जाऊंगा। इसका क्या मतलब हुआ, है? नैनों पर बिठा के ले जाऊंगा माने प्यार से खींचूंगा या लाला लाखों से खींचूंगा, प्यार से खींचूंगा माने नैनों पर बिठाऊंगा, तुम मेरे नैनों के तारे हो, 9 लाख सितारे होते हैं ना, हैं? उनमें भी आधे दिन के आधे रात के, जो रात के सितारे होते हैं और दिन के सितारे होते हैं उनमें फर्क क्या होता है?
है?
जो दिन के सितारे हैं वो अपने प्रकाश को सूर्य के प्रकाश में मर्ज कर देते हैं। जो आज भी परंपरा चली आ रही है, कोई कारखाने का मालिक होगा, फर्म का मालिक होगा, तो क्या लिखा है? बाप का नाम लिखेगा राम एंड सन्स कंपनी। तो अपने बाप का नाम देगा और बच्चों का नाम नहीं देगा। तो वो है सूर्यवंशी सितारे, जो अपने प्रकाश को, ज्ञान प्रकाश को किस में मर्ज कर देते हैं? सूर्य में मर्ज कर देते हैं। वो मुख से कभी ये नहीं कहते ये ज्ञान मेरा है, ये प्रकाश ज्ञान का मेरा है। क्या कहते हैं हमेशा? है ये ज्ञान हमको शिव बाबा से मिला। और जो रात के सितारे हैं, चंद्रमा की रोशनी में मिलने वाले, वो अपनी चमक अपने आप दिखाते हैं। क्या इतनी चमक दिखाते हैं कि चंद्रमा जब कलाहीन होने लगता है तो वो फीका पड़ जाता है। क्या और सितारे चमक मारते हैं? कहाँ की यादगार है? संगमयुगी वर्तमान, वो ब्रह्मा कुमार कुमारियों की यादगार है, जो अपने को अम्मा कुमार कुमारी कहते हैं। बाप ज्ञान सूर्य को जानते ही नहीं, मानते ही नहीं। मानते हैं? जानते ही नहीं, माने ही कहां से। तो वो सितारे दुनिया में अपने को प्रत्यक्ष करते हैं। बहुत फोटो खिंचाते कि नहीं? है ज्ञानामृत पत्रिका से लेकर के दुनियावी पत्रिकाओं तक, टीवी में, इंटरनेट में, रेडियो में अपने को प्रत्यक्ष करती हैं, कॉन्फ्रेंस में, प्रदर्शनियों में, या भगवान बाप को पहचान कर भगवान को प्रत्यक्ष करते हैं, अपने को प्रत्यक्ष करते हैं। तो वो है रात के सितारे। क्या ज्ञान चंद्रमा की रोशनी में पलने वाले सितारे अभी पल रहे हैं कि नहीं? कौन है ज्ञान चंद्रमा? ब्रह्मा बाबा। किस में प्रत्यक्ष हो रहा है? वो तो सूक्ष्म शरीरधारी हो गया ना, तो किस में आ रहा है? गुलजार दादी में आकर के और पार्ट बजाते हैं, लेकिन उनको मानता कोई नहीं है। कोई ब्रह्मा कुमार कुमारी उनके प्रकाश को मानता नहीं है। अभी पिछले साल की एक वाणी आई है, व्यक्त वाणी, उसमें ब्रह्मा बाबा ने गुलजार दादी से बोला, गुलजार दादी के द्वारा बोला, दिल्ली में राजधानी स्थापन हो रही है, दिल्ली में आप सबको जाना है। क्या दिल्ली को सबको माथा टिकाना है? तो ब्रह्मा कुमारियां, ब्रह्मा कुमार क्या करते हैं, जो ज्ञान की रोशनी में फीका पड़ गया है ब्रह्मा, उसके मुंह को बंद कर देते हैं, गुलजार दादी को मुंह में हाथ रख देते, कहते हैं बाबा आप माउंट आबू में बैठे हुए हैं, आप दिल्ली में नहीं बैठे हुए हैं। याद दिलाते हैं। तो देखो जैसे बैल को मुसीका लगाया जाता है ना, ऐसे वो ज्ञान चंद्रमा के, ब्रह्मा के बच्चे ही ज्ञान चंद्रमा की रोशनी को रोकने की कोशिश करते हैं, तो ऐसा हो जाता है। एक दिन के सितारे और एक रात के सितारे, दोनों प्रकार के सितारे मिलकर के संख्या कितनी गिनी जाती है? हैं? 9 लाख। कहते हैं रानी का हार भी 9 लखा गाया जाता है, है? ओ, कौन से हार की बात होगी? है है हार माने माला। वो 9 लाख आत्माएं जो हैं वो माला बनती है उनकी संगम में। 4.5 लाख हैं प्रवेश करने वाली आत्माएं और 4.5 लाख वो हैं जिनमें प्रवेश किया जाता है। इस तरह 9 लाख सितारे हैं जो संगम युगी नारी से लक्ष्मी बनने वाली आत्मा के गले का हार बनते हैं, इसलिए वो 9 लाख हार गाया जाता है। तो देखो शिव बाप कहते हैं ये जो सूर्यवंशी कहे जाते हैं 16 कला संपूर्ण वो श्रेष्ठ आत्माएं तो हैं, उनमें भी 2 प्रकार के हैं, एक अव्वल नंबर एक द्वैम नंबर। अव्वल नंबर इसलिए कि जीवन रहते ही उसी जीवन में पढ़ाई पढ़ते हैं और उसी जीवन में पद प्राप्त कर लेते हैं। बाकी दूसरे जो हैं 9 लाख के अलावा, चाहे वो सतयुग के अंतिम जन्म में आने वाली आत्माएं 2 करोड़ हों, चाहे त्रेता के अंत में आने वाली आत्माएं 10 करोड़ हों, और चाहे वो आत्माएं 500 करोड़ कलयुग के अंत तक आने वाली हों, वो कोई भी आत्माएं भगवान बाप से ज्ञान सूर्य से डायरेक्ट वर्षा नहीं ले पाती। किससे वर्षा लेती है? नहीं, देहधारी गुरुओं से वर्षा लेती है। जैसे षष्ठी रूपी झाड़ में जो पहला पत्ता है कृष्ण किससे वर्षा लेता है? है देह धारण करने वाली आत्मा से वर्षा लेता है या जो सदैव निराकार है उससे वर्षा लेता है? देह धारण करने वाली आत्मा। और भी जो भी धर्म पिता है और उनके फॉलोअर्स हैं वो भी सिर्फ धर्म स्थापन करते हैं लेकिन राजाई स्थापन नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि उन्होंने संगम युग में राजाई का वर्षा देने वाले, राजाई की पढ़ाई पढ़ाने वाले बाप को पहचाना ही नहीं। इसलिए जिसने पहचाना 100% किसने पहचाना? किसने पहचाना है? अरे किसी ने पहचाना कि नहीं पहचाना? पूरा किसने पहचाना? मनुष्य सृष्टि के बाप ने पहचाना ना, जिसको हर धर्म में गाया जाता है एडम आदम आदिदेव के रूप में। तो वो देह धारण करता है 84 जन्मों में या नहीं धारण करता है? तो देहधारी आत्मा हुई या नहीं हुई? देहधारी आत्मा अव्वल नंबर की, उससे द्वापर युग में वो सभी धर्म पिताएं और उनके फॉलोअर्स राजाई का वर्षा लेते हैं। वो आत्मा अपने ग्रुप के साथ उनके धर्म में जाकर के राजाई स्थापन करती है। जैसे भारत में मुगल सल्तनत चली, मुगलियों की राजाई, पहला राजा कौन हुआ है? नहीं मालूम? बाबर। नाम क्या पड़ा? बाबर, बाबा रह। क्या रहा? कभी बाबा रहा था, उसका नाम बाबर पड़ गया। वही आत्मा जो बाबा रही, जिस बाबा के बारे में मुरली में बोला है इस सृष्टि पर सदा कायम कोई चीज है ही नहीं, सदा कायम एक शिव बाबा है, वही बाबा रह। वही आत्मा मुगल सल्तनत की स्थापना की शुरुआत करती। ऐसे ही सब धर्मों में जितने राजाएं हुए उन धर्मों के धर्म पिताओं ने धर्म स्थापन तो किया लेकिन राजा ही स्थापन नहीं की, क्योंकि संगम युग में उन आत्माओं ने राजयोग सीखा ही नहीं। राजयोग सिखाने वाला, राजयोग सिखाने वाला राजयोगी होगा सबसे बड़ा या नहीं है? राजयोगी होगा तो बताओ शिव राजयोगी है या जिसमें प्रवेश करता है वो राजयोगी है? बड़ा योगी कौन है? शिव को तो योग लगाने की दरकार है ही नहीं। वो राजयोगी जो शिवलिंग के रूप में पूजा जाता है, सारी दुनिया में सार्वभौम में पूजा होती है, सबसे जास्ती मंदिर उसके बनते हैं, मूर्तियां उसकी मिली हैं, वो शिवलिंग में उसका सात्विक रूप सोमनाथ मंदिर में दिखाया गया, उसमें उसके शरीर की यादगार जो अविनाशी शरीर है, क्या सारी दुनिया में सबकी महामृत्यु के समय मृत्यु होगी और उस शरीरधारी की मृत्यु नहीं होगी, क्या कालों का काल महाकाल जिसको कोई काल खा नहीं सकता, क्या बोला मुरली में, क्या कालों का काल महाकाल जिसको कोई काल खा नहीं सकता। प्रलय काल आएगा तो प्रलय काल खाएगा नहीं उसको है? अरे उसको भी खा जाएगा तो फिर ये पंचभूत कहां से आएंगे? वो पंचभूत सात्विक कैसे बनेंगे जो तमो प्रधान बन गए हैं? क्या पृथ्वी बड़े बड़े भूकंप लाती है और सारी दुनिया की बिल्डिंगें गिराई देती है, आग सारी दुनिया में तांडव नृत्य करेगी जब एटम बम फटेंगे, ये पांचों ही तत्व बड़े तमो प्रधान हो जाते हैं, जड़मयी तत्व हैं या चैतन्य तत्व हैं? उन जड़ तत्वों को कौन सा तो प्रधान बनाएगा? अरे जो चैतन्य आत्माएं हैं उनको तो ज्ञान दे करके समझाया जा सकता है, मनुष्य आत्माओं को 500-700 करोड़ मनुष्य आत्माएं आज नहीं तो जब अंतिम विनाश होगा तब तक ज्ञान को और ज्ञानदाता को पहचानेंगी जरूर और उसको याद भी करेंगी, क्या और उसके बताए हुए महामंत्र, क्या मन मना भव मेरे मन में समा जाए, किसने कहा? शिव कहता है, उसको मन है, शिव को मन है, वो सोचता है कि असोचता है? वो तो सोचता ही नहीं, उसको मन है ही नहीं, तो कौन कहता है मन मना भव? शिव बाबा कहता है, शिव बाप नहीं कहता, आत्माओं का बाप नहीं कहता, कौन कहता? साकार निराकार का मेल कहता है जो इस सृष्टि पर सदा कायम है, महाविनाश के टाइम भी कायम रहता है, वो कहता है मन मना भव मेरे मन में समा जा। अब बताओ झाड़ के चित्र के ऊपर जो बैठा है सबसे ऊंची स्टेज में, उसके मन में क्या है जो उस मन में समा जाए? उसके मन में किसकी याद है? बताओ है शिव की याद, शिव बाबा क्या बनाने आया है? देवता बनाने आया है ना, नके निराकारी आत्मा बनाने आया है, तो किसको याद, किसकी याद है उसको? आत्मिक स्थिति में है 100% या आत्माओं के बाप की स्मृति में है? है पक्की की 100% आत्म की स्थिति में है, जिसकी यादगार है हीरा जो पत्थर भी बनता है। क्या सोमनाथ मंदिर का हीरा वो सिद्ध की यादगार है या पुरुषार्थी? श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ पुरुषार्थी की यादगार है, पुरुषार्थी की यादगार है। वो पुरुषार्थी आत्मा शिवलिंग में बिंदु के रूप में रखी जाती है और जो लिंग है वो साकार की यादगार है, बड़ा रूप, वो भी निराकारी है। कैसे? उसमें हाथ पांव नाक आंख कान नहीं दिखाई जाते, इंद्रियां दिखाई ही नहीं जाती, दिखाई जाती हैं, इसलिए वो भी निराकार। इसलिए साकारी सो निराकारी। गीता में कहा है अव्यक्त मूर्तिना, अव्यक्त माने जो आंखों से न देखा जाए, मूर्ति माने मूर्तमान जिसे देखा जाए, तो वो मूर्ति की मूर्ति भी है और अव्यक्त भी है। उस अव्यक्त मूर्ति के द्वारा सारा संसार सृष्टि के आदि में बाहर आता है और उसी अव्यक्त मूर्ति में महाविनाश के समय, महामृत्यु के समय सारे प्राणी और जड़ जंगम सब उसी में समा जाते हैं। उसी बीज में से सारी मनुष्य सृष्टि निकलती है और उसी बीज में समा जाती है। जैसे कोई परिवार है, परिवार में जो भी भाती है, बाल बच्चे हैं, पत्नी है, कहां से आए, कौन रचयिता? बाप। बाप रचयिता है? बाप ने किसको रचा? पहले पहले माँ को रचा और माँ से बच्चे पैदा हुए। कोई कहता है ये बच्चे किसने पैदा किए, तो लोग जो नहीं जानते हैं वो कहेंगे माँ ने पैदा किए हैं। लेकिन वास्तव में क्या माँ के अंदर अपने आप पैदा हो गए? कहाँ से आए, किसने पैदा किए? बाप ने बीज डाला तब पैदा हुए। ऐसे ही ये सारी मनुष्य सृष्टि एक परिवार है, वसुधैव कुटुंबकम्। सारी वसुधा एक कुटुंब बनती है भगवान के आने पर। क्या? और उस कुटुंब का मूल बीज रूप बाप कौन हुआ? वो झाड़ के चित्र के ऊपर बैठा शिवलिंग है जो नग्न रूप में दिखाया गया, निराकार की यादगार। तो बताया कि ये बड़े से बड़ी समझानी है। क्या सारी दुनिया किसको माथा टेकती है? है एक को माथा टेकती है। जो शिवलिंग है वो किसको माथा टेकेगा? जो शिवलिंग की यादगार है जो आत्मा, वो किसको माथा टेकेगी? माथा टेकती है, है? माथा टेकती है या उसके बताए हुए रास्ते पर चलती है? बताए हुए रास्ते पर चल करके उस स्मृति में स्थिर होने का पुरुषार्थ करती है। क्या करती है? इसमें माथा टेकने की बात है या ज्ञान में टिकने की बात है? ये तो ज्ञान की बात है, माथा टिकने की बात है। ओम शांति। तो फिर बच्चे पूछते हैं, क्या बाबा ये बात पहले क्यों नहीं बताई कि ये शिवलिंग किसकी या किस आत्मा की यादगार? बाबा तो बताते हैं पहले से ही, लेकिन जो देवात्माएं हैं वो इशारे से समझ जाती हैं। देवात्माएं नहीं है, राक्षसों के प्रभाव में तो नहीं समझ। बाबा ने तो बताया, न मैं पूजी बनता हूँ न पुजारी बनता हूँ, तो शिवलिंग जो शिवलिंग है जो पूज्य है वो उसकी यादगार है। वो कहता है मैं पूजी बनता ही नहीं, वो क्या कहता है, मैं पूज्य बनता ही नहीं। तो शिवलिंग उसकी यादगार है नहीं, वो पुजारी भी नहीं बनता और पूज्य भी नहीं बनता।